सबसे बड़ी वजह बताऊं आपको घरों के टूटने की, अल्लाह से ताल्लुक टूटा हुआ है। जब हमारा अल्लाह से ताल्लुक जुड़ता है ना, तो अल्लाह के बंदों से भी हमारा ताल्लुक जुड़ने लगता है। और एक और बहुत बड़ी वजह है कि कमाई में कुछ मुश्तबह चीज़ें डल जाती हैं। वो रिश्वत भी हो सकती है, वो सूद भी हो सकता है, वो हेरा फेरियाँ भी हो सकती हैं, वो दो नंबरियाँ भी हो सकती हैं। याद रखिए कि रिस्क हराम की एक तासीर है। एक तो बंदे के अंदर से हया खत्म हो जाती है। ये जो आदम और हव्वा से फल चखा गया था और उसके फौरन बाद लिबास उतर गया, ये सिंबल था, सिंबॉलिकली अलामती तौर पे अल्लाह ताला ने इसमें क्या बता दिया था कि जूं ही नाफरमानी होगी, जिस्म से अल्लाह के दिया हुआ कपड़ा उतर जाएगा। आज भी जिसका दिल कुरान की तरफ नहीं लगता, जिसका 5 वक्त मस्जिद में जाने को दिल नहीं करता, कुछ लोग कहते हैं हमारा नमाज पे दिल नहीं करता, आप चेक कीजिए, ज़रूर खाने में गड़बड़ है। मैं आपको इसकी मिसाल देती हूँ कि गाड़ी साफ सुथरे अच्छे पेट्रोल से उसकी टैंकी भरें तो ड्राइवर को पता चलेगा कि आज गाड़ी दौड़ रही है, और कचरे वाला खराब गंदा पेट्रोल डाल दें गाड़ी झटके देगी। ये गाड़ी का जो पेट्रोल है ना, ये हमारे खाने वाली मिसाल है। आप अच्छे साफ सुथरे फ्रेश खाने खाएं, आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। और अगर सुबह उठकर आप बाजार के बने हुए नगेट और बेकरी बनी हुई जो जमाने की उसमें पता नहीं क्या बलाएं डल गई, और घी में तड़पता हुआ समोसा और तड़का लगी हुई निहारी और इतने हैवी खाने खाएंगे, सारा दिन बिस्तर से नहीं उठने को दिल करेगा। तो खाने का ख्याल रखना। फिर घरों में एक और बड़ी वजह है कि जो मुख्तलिफ रिश्ते हैं ना, तो उनको उसकी जगह नहीं दी जाती। यानी मसलन बीवी का दिल करता है कि शौहर बस सारा वक्त मुझे ही दे, अपनी सारी कमाई मेरे हाथ में रखे, और माँ अगर थोड़ी सी तेज है तो वो कहती है कि पहले मुझे दे, मैं इसकी बीवी को दूंगी। यानी सास बहू का एक रिश्ता या नंदों के साथ कुछ बातें, इसकी वजह से भी घर टूट जाते हैं। बड़े ही बदनसीब हैं वो माँ और बाप जिनकी गलत तरबियत की वजह से एक मर्द ऐसा बदजुबान बन गया, गुस्से वाला बन गया कि वो अपनी बीवी की छोटी छोटी बातों पे बात करता है। और बड़े खुशकिस्मत है वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कोई अपने बच्चे को कोई तोहफा देना चाहता है ना, तो अच्छे अदब और अखलाक से प्यारा तोहफा कोई नहीं है। आपके भी गोदों में जो बच्चे हैं ना, इनको अपना बच्चा समझ के कम, और आने वाली किसी औरत का शौहर होने के नाते से ज़्यादा पाला करें, क्योंकि माएँ बिगाड़ती हैं और बीवियाँ भुगतती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। फिर इसी तरह से एक और बहुत बड़ी वजह, बेजा तवक्कुआत, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस। और ये कहाँ से आई? फिल्मों से, ड्रामों से। फिल्मों में दिखाते हैं हीरो साहब घर आए और बेगम बड़ी प्यारी साड़ी पहनकर और सजी संवरी हैं और बड़े प्यारे से पहन के अंदर वो शामी कबाब फ्राई कर रही हैं। मियाँ को देखकर तो वो जनाब बिछी गई और फिर वो लाडर नखरे हो रहे हैं। अब मर्द ने एक एडवर्टाइजमेंट में एक ऐसी खूबसूरत लड़की नुमा औरत को देखा बीवी के रूप में, जब अपने घर आया तो बीवी के पास से लहसुन प्याज की स्मेल आ रही है, पसीने में डूबी हुई। अब क्या होगा? वो कहेगा मुझे तो अच्छी बीवी नहीं मिली। यानी बेजा उम्मीदें हैं ना। अब एक औरत जिसके 4-5 बच्चे भी हैं, घर में बुजुर्ग भी हैं, घर भी बड़ा है, सुबह से तो शाम तक बेचारी काम में लगी हुई है, तो वो एक मॉडल बनकर अपने मर्द के लिए तो नहीं होगी। हाँ, इसमें बैलेंस होना चाहिए, मैं सिर्फ मिसाल दे रही हूँ। और बीवी उम्मीद लगा ले गुलफाम शहजादा, शौहर जो है वो तो बस शहजादे ही होंगे, और आते हुए वो मेरे लिए रोज ही फूलों का गुलदस्ता लेकर आएंगे, कौन सा फूल लाऊं? वो कहते गोभी का ले आओ, वही पकाना है। शादी से पहले ये रोज जो मुझे फूलों के ये मिलते हैं, मुझे इस पर इतना अफसोस भी होता है कभी, और मुझे बताइएगा ये मिलता कितने का है? इतने गुलदस्ते, और मैं कहती हूँ इसको बेच के अलबरका में पैसे डाल दो, मुझे एक तस्वीर भेज दो, मेरे लिए वो भी बहुत है। अच्छी बात है, मैं बुरा नहीं कह रही, लेकिन बात ये कह रही हूँ कि आम जिंदगी में हर रोज ये नहीं चल सकता। क्या आपके शौहर रोज आपके लिए कुछ ला सकते हैं गिफ्ट में? और जो लाते हैं वो आपको पसंद भी नहीं आता। फिर इसी तरह खुद परस्ती, और इसको मैं एक दूसरा नाम दूं, अना। ये भी 2-3 दिन पहले मुल्तान में लास्ट वीक में इस पे बात हुई है। आज हम अपनी बच्चियों को झुकना नहीं सिखाते, बेंडेड होना नहीं सिखाते, फिर इसी से मुनाफ़त पैदा होती है, कहीं मौका परस्ती है, और सबसे बड़ी बात बताऊं, ज़ाती मुफाद का तहफ़्फ़ुज़, मुझे फ़ायदा मिल जाए, मेरी बात मानी जाए। अब ख़ानदान में एक शादी आ गई, अब एक मर्द है, आप ज़रा सोचिए तो सही कि घर के 6 अफराद के लिए उसको एक शादी में 3 दिन के 3 जोड़े बनवाने हैं, तो 6 से ज़रब दें 18 जोड़े उसको बनाने हैं, और आपके ख्याल में एक एक जोड़ा जो है वो अब हज़ारों में आता है, कम नहीं है, तो फिर कहाँ से लाएगा? इससे कम पे आप राजी नहीं है? थोड़ी सी अपने मर्दों को सहूलत दीजिए, पुराने को नया कर लें, जोड़ तोड़ कर लीजिए, आप मैंने पहना अब आप पहन लें, अब आपका मैं पहन लूँ, आप उसका वो पहन लें, आपका भी शौक पूरा हो जाएगा और अगले का भी शौक पूरा होगा। ये जो हर मौके पे हम अपने घरों में एक जंग का माहौल रखते हैं ना, वो दुरुस्त नहीं है। औरत को बहुत सलीका शुआर होना चाहिए कि महंगा खरीद लिया क्या फ़ायदा, सस्ती चीज़ जब आप महंगी बनाएंगे तो अच्छी लगेगी ना। अपने घर वालों को जगह दीजिए, आपने शायद वो लोग नहीं देखे जो कुछ होम्स में पलते हैं। क्राइसिस सेंटर का नाम शुक्र है पाकिस्तान में मुतारफ नहीं है, चले यहाँ क्या नाम लेते थे, होम्स होते हैं ना, जैसे ईदी होम और कुछ, बहुत कम। बाहर की दुनिया की औरत बहुत तनहा है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि सबसे जल्दी जिन नेकियों का सवाब मिलता है वो नेकी और सिला रहमी है, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना, रिश्तों को जोड़ना, और सबसे जल्दी जिन बुराइयों पर अजाब आता है वो बगावत, सरकशी और कतई रहमी है। अल्लाह ना करे कि आप में से मेरे में कोई ऐसा हो। ये इब्ने मजा की रिवायत है 4212 नंबर की। और रिश्तों की कदर कीजिए, हर रिश्ता अहमियत का हामिल है, इवन आपके घर का छोटा सा बच्चा, वो भी आपसे चाहता है। एक बहुत बड़ी वजह घरों के टूटने की, ससुराली रिश्तों की कदर ना करना, ख़ास तौर पे फिर शादियों के गानों और टप्पों में सास और नंद के खिलाफ गाने, सास गले की फांस। मुझे बताइए, जिस लड़की के दिल में आपने पहले ये डाल दिया, कल उसको सास अच्छी लगेगी? और नंद गली का गंद, नाउज़ुबिल्ला, ये इस्लामी कल्चर है? अल्लाह तो सूरत हुजरात, जिसको सूरतुल अखलाक भी कहते हैं, उसमें कितना कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन हम ऐसी बातें नहीं करते। हर रिश्ता खूबसूरत है, आपकी सास ने जितने लाड से आपके कपड़े बनाए हैं ना, कोई नहीं बना सकता। आप दुआ करें अपने बच्चों की शादियाँ खुद करके जाएं। आप चली गई ना तो जोड़े तो बनेंगे आपकी बहू के, लेकिन वो कोई बेचारी रहम खा कर भूफी बना देगी, को खाला बना देगी, को चची, चलो दो दो जोड़े बना दें, वो लाड नहीं होते। जिन्होंने पैदा किया वही लाड देखती हैं। हमेशा दुआ करें अल्लाह जो पैदा करे वही पाले। अपने बच्चे को दे दिलाकर कभी एहसान नहीं को जितलाता, कोई दूसरा पाले हाँ किसी बच्चे को तो सारे सुना रहे होते हैं, इसको ये दिया मैंने, इसका महीना लगा दिया, मैंने इन बच्चों को ये कर दिया। इसलिए कि हम जिन रिश्तों को अपनी ज़िंदगी में निभा रहे होते हैं ना, हम उन रिश्तों को इंजॉय नहीं कर रहे होते। और आप देखेंगे कि जब मुख्तलिफ ईंटों की जगह हर रिश्ते को रखिए, अब ये दीवार अगर है बाहर, हर ईंट अपनी जगह पे लगेगी तो बहुत अच्छी होगी। और ख़ास तौर पर आप देखिए कि आप में से बच्चियाँ भी बैठी हैं, कुरान पढ़ रही हैं आप, मैं आपको कभी ऐसा कुरान पढ़ने की दावत नहीं दूंगी कि जिसको पढ़ने के बाद आप इंसान बेजार हो जाए और आपको बस किताबों से प्यार है और आपके हाथ में बस कुरान है, मसल्ला है, मर्द टोपी पहन कर जाए नमाज लेकर मस्जिद में बैठा रहे। हमारा दीन ये नहीं कहता, ये भी है लेकिन हर मामले में इबादत है। आप सफाई करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, करती नहीं तो चले करवाती होंगी, ये भी इबादत है। अत्तहूरु शत्रुल ईमान, इस नियत से घर साफ किया और कराया करें कि अल्लाह के नबी ने कहा कि ये ईमान का निस्फ है, आधा ईमान पूरा हो जाता है सफाई से। खाना पकाते हैं आप, कोई बोझ है आपके लिए? कितनी दफा कुरान में आते वात है मुत्ताम, खाना खिलाओ। तो अब खाना खिलाना वो नहीं होता देख पका के बाहर के भूखों को खिला दें, ये रोज आपके घर में भूखे नहीं आते? शाम को जब शौहर भूखे आते हैं, बच्चे भूखे आते हैं और भी घर के अफराद भूखे हैं, क्या आपको उस खाने का अजर नहीं होगा? नियतों को ठीक रखिए। एहसान क्यों जतलाते हैं, सुबह से किचन में खड़ी हूँ मैं तो बैठी ही नहीं। सच्ची बात है, मैंने तो सांस भी नहीं लिया सुबह से, फिर तो आप फौत हो चुकी होती, अब तो आप कब्रिस्तान में होती। और साथ कहते भी जाते हैं और साथ कहते रहते अल्लाह माफ करे अल्लाह माफ करे। ऐसा नहीं है, असल बात पता क्या है कि हम बहुत सारी चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आपको शौहर अच्छे नहीं लगते, अल्लाह ना करे किसी का ऐसा हो, चले जाइए फौत हो जाए, आपको छोड़कर बाहर की दुनिया में चले जाए, दूसरी शादी कर ले। आप में जिस बहन को अपने शौहर अच्छा नहीं लगता उसे कह जाओ शादी कर लो दूसरी, मुझे नहीं तुम अच्छे लगते, है जरूरत है हिम्मत तो फिर सब्र कीजिए ना। आप शहजादी हैं और ना वो गुलफाम शहजादे हैं, आप जैसी हैं वैसे वही हैं, कुछ कमी आप में कुछ उनमें, गिव एंड टेक है, फॉरगिव एंड फॉरगेट है, जी और जीने दो, लिव एंड लेट टू लिव, खुश रहिए। आपका घर ऐसा होना चाहिए कि जाने को दिल करे। देखिए घर कहते हैं वो जगह जहां से निकलते ही वापस आने को दिल करे। मेरी नजर में आइडियल घर क्या है कि शौहर घर से भी निकल रहे ना तो अभी गाड़ी में बैठ के बाहर जाते ही बीवी को मैसेज कर दे आई मिस यू, कभी किया किसी ने? और आप बीवी हैं मियाँ सब अभी गाड़ी में ऑफिस भी नहीं पहुंचे और आप उनको कहते हैं कि आई मिस यू आई एम वेटिंग फॉर यू, किए कभी? आप कहेंगे ये तो बड़ी बेशर्मी की बातें हैं, ये तो फिल्मों में चलती हैं, हम कैसे कहते तो बस तखबार। कभी आपने अपने शोहर को आई लव यू कहा? उर्दू में कह दें, पंजाबी में कह दें, गुजराती में कह दें, हम इजहार ही नहीं करते। ये बहुत बड़ी वजह है, उसी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए थे, वो बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो में, वो लेक्चर सुनिएगा मकान से घर तक ना, आप सुनिए। इस टॉपिक पे बहुत मवाद है हमारे पास वेबसाइट्स पे, ऐप के अंदर भी मौजूद है, निकाय टू जी भी है, लेकिन कम से कम अपने घर को जन्नत नुमा तो बनाइए। औरत का बहुत बड़ा रोल है, बिलीव मी, एक औरत को अल्लाह ने मल्टीटास्किंग बनाया हुआ है, मर्द नहीं घर चला सकते, बिलीव मी नहीं चला सकते, अल्लाह ने उनको यूनिट्रैक बनाया। वो कहते एक वक्त एक गल कर, और औरत बच्चों को भी देख रही है, हंडिया में चम्मच भी फेर आती है, जाके कपड़े भी मशीन में डाल आती है, अल्लाह ने उसका दिमाग मल्टी ट्रैक बनाया, इसलिए औरतें बहुत ज्यादा बोलती हैं और एक वक्त में बहुत से काम करती हैं, क्योंकि अल्लाह को पता है औरत से मैंने बहुत से काम लेने हैं। सिर्फ एक बच्चे की माँ है, वो एक बच्चे की कितनी मुख्तलिफ चीज़ों को सफ़र कर रही होती है। तो घर को घर बनाइए, मिजाज में धीमापन, और अक्सर इसके मैं कोड वर्ड्स देती हूँ कि जुबान छोटी दिल बड़ा, बोलें जरा सारे मिलके, एक बार फिर बोल दें। अमूमन हमारा क्या होता है, ऑपोजिट नहीं होता? जुबान लंबी दिल छोटा, ये नन ने ये ले लिया, वो मेरी बेडशीट चली गई, वो मेरा डिनर सेट सास ने निकाल लिया, वो मेरी वो पतीली किधर गई, सास भी कुछ 20 साल पुरानी चीज ढूंढती है, वो मेरी पतीली किधर गई, जरूरत नहीं थी किसी को छेड़ने की, तुमने किधर रख दी। किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि रिश्ते दरख्त की शाखों जैसे होते हैं, ये जो दरख्तों के नीचे शाखें हैं ना, एक शाख में जितनी ज्यादा लचक होती है ना, इसके टूट कर दरख्त से जुदा होने के इम्कान उतने कम होते हैं, और टूटी हुई शाख जलने के अलावा और किसी काम नहीं आती। ये जो लकड़ियां जलाते हैं जिसको बालन कहते हैं, ये क्या है? दरख्तों से टूटी हुई शाखें। घर जुड़ा रखिए, नहीं तो आप एक शाख की तरह होंगी। कभी जाकर किसी ऐसी औरत से मिलिए जो बाप के घर आ गई, उसको सोचिए जो भाइयों के दरवाजे पे पड़ी हुई है। किसी ने कहा कि मैके के घर की खुशियां भी ससुराल के गमों से ज्यादा तकलीफ दे होती हैं, तरस खाएंगे लोग, अल्लाह ना करे कोई औरत का घर टूटे और जाए। और मर्दों को भी सेम थिंग, चूंकि आप खवातीन हैं तो मैं तो आपसे ही बात करूंगी ना, मर्दों को भी बीवियों की कदर करनी चाहिए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कहा करते थे कि मैं उस औरत से कैसे लड़ूं कि जो मेरे लिए खाना भी पकाती है, जो मेरे बर्तन भी धोती है, जो मेरे कपड़े भी सही रखती है, मैं उस औरत से कैसे लड़ूं? यानी कदम कदम पे तो एक मर्द को, एक भाई को, एक अपनी बीवी की जरूरत है, फिर क्या हुआ? आज बुरे तो कल अच्छे। आप देखिए खाने में क्या वैरायटी चाहिए आपको, आप रोज दाल नहीं खा सकते ना, तो आप रोज मुर्गी भी नहीं खा सकते, आपको पुलाव और मतंजन कितना प्यारा है लेकिन रोज नहीं खा सकते, तो कभी दाल पकती है तो कभी कड़वे करेले भी तो पकते हैं ना, तो कभी आप गाजर का हलवा बना के खाते हैं, तो कभी आप कह लीजिए कि सब्जी भी खाते हैं। जिंदगी में ये होगा, एक्सपेक्ट ना कीजिए ऐसा कि जो कोई कर नहीं सकता। ये फिल्मों में अच्छा लगता है, वो क्योंकि चंद घंटों का स्लॉट होता है, उनमें से भी अक्सर बेचारों के निजी मामले बुरे ही होते हैं। फिर आप देखिए कि आज हमारे यहाँ अमूमन जो तरजीहात बदल रही हैं, बहुत तरक्की करने के बावजूद एक आला ग्रेड का अफसर अपने बच्चों से बात करने का वक्त नहीं पाता। रेस्टोरेंट में बैठे खाना खाकर 5,000 फॉलोअर्स को सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि देखो मैं इस वक्त खाना खा रहा हूं, लेकिन घर वालों से बातचीत ही नहीं है। हम डिस्प्ले पे आ गए, कुछ लेके भी दें तो पहले तस्वीर खींच के मीडिया पर डाल दो कि ये लेके दे रहा है अपने बीवी को और अपने बच्चों को। और आज दूर वालों से करीब और करीब वालों से कम्युनिकेशन गैप है। शौहर बीवी बहुत कम बैठकर दिल की बातें करते हैं, चाय का कप लेके बैठ भी जाएंगे तो टूटी बगदी ते पाइप टूट गया तो जी खर्चा दे। यानी 90% मियाँ बीवी के झगड़े पैसे की वजह से होते हैं। मर्द अखीर कहते हैं कि नहीं, कई मर्द कहते हैं कि हम घर तब जाएंगे जब बीवी सो चुकी होगी, क्योंकि इससे हमें देखते शुरू हो जाना है, ये नहीं है तो वो नहीं है। ऐसा ना कीजिए। फिर इसी तरह से आप देखिए कि माँ, अब शौहर बीवी पे काफी बात हुई ना, आप देखिए कि माँ होने के नाते आपका मेरा क्या रोल है। आप देखिए कि एक होती है सिंगल तस्वीर ना, जैसे पिक्चर होती है कागज पे, और एक होता है 3D वीडियो चलती फिरती है। एक घर में अगर शौहर बीवी का ताल्लुक देखा जाए ना, तो उसका जो हम मुकाम है वो तो है ही है, बच्चों के साथ माँ और बाप का ताल्लुक। और आप देखिए किसी भी घर में ना अमूमन दो किस्म के बच्चे और दो किस्म के माँ बाप होते हैं। कौन? आप अपने ऊपर लीजिए, आप हैं और आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन साथ ही आपके सास ससुर भी हैं, वो बड़े हैं, लेकिन आपका शौहर या आप उनके बच्चे हैं। यानी घर के बुजुर्गों और घर के बच्चों के बीच में जो जो आपकी एज के लोग होते हैं, इनका दो रंग से रूप होता है। आप अपने बुजुर्गों के साथ रहम का मामला कीजिए, रब्बिरहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आप कहती हैं ससुराल के क्या हक हैं जी, वो ससुर और सास की तो खिदमत नहीं है इस्लाम में। नहीं जी, मर्द करे। यानी ये आज के दौर की एक गलत फहमी है कि जी ससुराल वालों के तो कोई हकूक ही नहीं है। देखिए वो इस्लाम जो हमसायों का हक रखता है, कमजोरों का रखता है, मिसकीनों का रखता है, क्या घर में मौजूद बुजुर्ग मिसकीन नहीं है, कमजोर नहीं है? और क्या उन्होंने आपको नहीं दिया? अगर आज आपके पास बहुत कुछ है, बेहतरीन गाड़ी की चाबी आपके हस्बैंड ने आपको दी ड्राइवर समेत, आपके पर्स में नोट भी हैं, जूते कपड़े कहाँ से आए? शौहर ने दिए तो शौहर कहाँ से आया? सास जिसको आप शौहर की माँ कह लेना, उससे मोहब्बत करने की बस एक ही वजह बहुत है कि वो आपके शौहर की माँ है। पाल पोस के रख कर, रातों को जाग कर, फजरों पे उठा कर, कुरान हिफ्ज करा कर, आप उसकी तरबियत करके, पाल पोस के एक बच्चा उसने आपको दे दिया, तो क्या आप उस औरत की कदर नहीं करेंगे, ससुर की कदर नहीं करेंगे? और ना करें, कल आपकी भी नहीं होगी। उकूकुल वालिदैन एक ऐसा जुर्म है कि जिसकी सजा के लिए आखिरत का इंतजार नहीं होता, दुनिया में अल्लाह ताला उस पर पकड़ते हैं। तो घर के बुजुर्गों के साथ अच्छा रहिए। फिर आप देखिए कि अपने बच्चों की तरबियत करते वक्त कभी ना भूलें। ये तो ऐसा मेरा टॉपिक है कि आप इस पर सैकड़ों लेक्चर आप सुन सकते हैं। जिसको शौक है ना कि हमें पेरेंटिंग सीखनी है, तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन आज की माँ से ज्यादा मीडिया हमारे बच्चों की पेरेंटिंग कर रहा है, बाहर की दुनिया का ज्यादा असर है। फिर दूसरों की झूठी शानों शौकत, आज तो प्रोफाइल्स पे लगी पिक्चर्स और शेयर्ड पिक्चर्स जो स्नैपचैट से दिखता है, अपनी जिंदगी पकड़ते रहते हैं। हो सकता है घर में भिंडियां पकी और बच्चा रो रहा है कि मैंने नहीं खानी, और इतने में खाला के घर से पिज्जे की तस्वीर आ गई कि आज हमने पिज्जा बनाया और हम मैकडोनल्ड पे खाना खा रहे हैं। इन चीजों से नक्सा। फिर बस माँ बाप अपने बच्चों के सामने दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं, इसका भी बहुत बुरा असर पड़ता है। बस घरों में लाड बहुत है, बेजा फरमाइशें बहुत हैं, मुझे लगता है गुजरात तो बड़ा बीबा सा शहर होगा, और आप तो गुजरात से भी हट के एक कस्बे में है ना इस वक्त। मुझे तो नहीं लग रहा कि आपसे मुझे कोई बात करने की जरूरत है, मेरी सारी बातें आपको फजूल लग रही होंगी कि ये बाजी पता नहीं कहाँ की बातें कर रही है, क्योंकि आप अभी उस मॉडर्न दुनिया में नहीं पहुंचे। आप अभी वहां नहीं जहाँ सुबह सुबह बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है बड़ी मुश्किल से, उनको बाजार के बने हुए खाने और बेकरियां। आप में से कितनी माएं जो सुबह बच्चे को अपने हाथ से रोटी बना के देती हैं, पराठा और अंडा, बस घी थोड़ा डाला करें, रात का सालन और रोटी। बच्चों का लंच क्या है? रोटी बनाकर उसमें अचार लगाकर रोल बना दिया, कल उसमें सालन लगा देंगे, परसों उसमें चटनी लगा देंगे। वो दौर अच्छा था। आज हम अपने बच्चों के साथ बहुत मुश्किल मामला करते हैं। फिर एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जब नया ताल्लुक शुरू होता है, जैसे आप में से कुछ बच्चियां हैं जिनकी शादियां होने वाली होंगी, और आप में से कुछ माएं हैं जो अपने घर में बहुएं लाएंगी, स्पेस दीजिए आने वाली बच्ची को, थोड़ा सा वक्त दीजिए। एक पौधा भी एक जमीन से निकाल कर आप दूसरी जगह जाकर लगाते हैं तो कुछ दिन कुमला जाता है। एक बच्ची अपने माँ बाप के घर में बड़ी सिक्योर होती है, वो भाइयों की लाडली है, वो माँ बाप की आंखों का तारा है, उनके जिगर के टुकड़े हैं। आप आते ही उसके ऊपर वो CID अफसर ना बन जाए, तनकीद ना कर दें, और वो बच्ची भी आहिस्ता आहिस्ता उस घर में संभल जाएगी। आप तो माशाल्लाह 40-50 साल की हैं, वो तो आप 16-18 साल की बच्ची लाई हैं जिसको अभी समझ भी नहीं इतनी। तो जब नया रिश्ता बनता है ना, उस वक्त दोनों तरफ सब्र चाहिए होता है, बर्दाश्त, सब्र। आने वाली बच्ची को मौका दीजिए और उसको ऐसे ऐसे अपने रंग में रंग लेते हैं। इस तरह शौहर अपनी बीवियों से फौरन ऐसे मुतालबे ना करें, ऐसी तवज्जो ना रखें कि जिससे उनको लगता है कि ये एक आइडियल बीवी है, और थोड़े दिन में कह दिया नहीं नहीं मुझे नहीं क्लिक की, इसको अक्ल नहीं है, इसको समझ नहीं है। ये जो अदम तवाजन है ना रिश्तों का, ये भी एक बहुत बड़ा बहरान पैदा करता है। और बाज दफा आप देखिए कि ये नए रिश्ते जो होते हैं ना, ये भाई बहनों के दरमियान इख्तलाफात बन जाते हैं। आने वाली लड़की जरा तेज है तो वो बहनों के खिलाफ कर देगी भाई को, माँ के खिलाफ कर देगी बेटे को। तो याद रखिए कि रिश्ते कीमती मोती की मानिंद है, अगर कभी मोती गिरकर बिखर जाए तो क्या करेंगे आप, उनको उठा लेंगे ना? तो कभी जिंदगी में ऊंच नीच होने भी लगे ना, तो उन रिश्तों को उठा लिया करें, बिखरे रिश्तों को थोड़ा सा झुक कर उठाइए, झुकना पड़ता है। वो कहते हैं ना, सुराही जरा झुक के भरा करती है पैमाना। तो घर में हो गई अनबन, फिर के आई एम सॉरी, अम्मी जी माफी दे दें, अबू जी ऐसे, अम्मी जी कह देना बेटा मैं गुस्से में आ गई थी, नहीं बेटा वो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना, करके तो देखिए। तो झुकिए, थोड़ा सा झुकेंगे तो चीज पकड़ेंगे। फिर आप देखिए कि गलती को माने, मैं अब आपको एंड पे बस चंद सोल्यूशन दे रही हूँ। अगर आपके घर में कोई गड़बड़ है तो गलती हो गई, अब माफी मांगिए, मत शर्माइए। जब गलती करते नहीं शर्माते तो माफी मांगते हुए आप क्यों शर्माते हैं? अपनी गलती को माने, जिम्मेदारी कबूल करें और फिर अपनी इसलाह कीजिए। आपकी किस बात से आपकी बहू का दिल दुखता होगा, कभी आपने सोचा? वो बेचारी अंदर जाके तकिए में सर रह के रोती होगी, और बाहर आने से पहले मुंह धो के आती होगी कि आपको ना पता चले कि आपकी फलां बात से दुखी हुई है। वो बेचारी तो कुछ नहीं करेगी, वो रब देख रहा है। याद रखिए, आज करेंगे कल होगा। आज आपने किसी की बच्ची के साथ ऐसा किया, कल आपकी बच्ची के साथ कोई करेगा। जो करेंगे वो वापस आएगा, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके रिश्तों को टूटने से बचाइए। ओवरलुक देख के भी अंधे हो जाएं कि नहीं देखा, सुन के भी बहरे बन जाएं कि मैंने कुछ नहीं सुना। मोहब्बत और खलूस देते जाइए देते जाइए, बेहतर होगा। किसी ने ऐसी कोई एडवाइस दी कि मैं तो थक गई हूँ जी प्यार मोहब्बत दे दे के कोई फायदा नहीं हुआ, यानी मेरे घर वाले तो पत्थर दिल हैं, ये खानदानी ऐसा है, फिर लोग एंड पे ये कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि डोज बढ़ा दो, प्यार की डोज, मोहब्बत की डोज से मुराद ये कि उस यानी मकदार बढ़ा दीजिए। अल्लाह के नबी के पास एक शख्स आए और कहा कि आप मुझे कुछ नसीहत कीजिए। तो आपने फरमाया 3 बार, यानी उसका सवाल दोहराया जा रहा था और आप बार बार कह रहे थे गुस्सा ना कर, गुस्सा ना कर, गुस्सा ना कर। सही बुखारी की रिवायत है 6116। तो ये खास तौर पे हमारे भाइयों के लिए, खाने में नमक बढ़ गया तो आप गुस्से में आ गए, और प्लेट फेंक दी, और कभी तो जुबान तेज हुई तो मुंह से लफ्ज भी निकल गया, और बाद में आकर कहते नहीं वो समय गुस्से में तलाक दे दी थी। तो कभी को प्यार में भी तलाक देता है क्या? था खाने में नमक मर गया ना, आप दही लगा लें साथ, थोड़ा सालन खा लें, घर में शहद तो हर एक के होता है, आप रोटी के साथ शहद लगा के खा लें। लेकिन ये छोटी छोटी बातों पे इज्जत नफ्स का किसी को मजरूह करना, ये गैर मुहज्जब लोगों की बात है। और अक्सर खवातीन से मैंने सुना है वो कहती है हमारे शौहर जो दो वो खा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी ने जो उनके सामने आता ना खाना होता तो खा लेते, अच्छा नहीं लगता तो नहीं खाते, लेकिन एक लफ्ज भी नहीं कहते थे कि अच्छा नहीं है। अच्छे मर्द ऐसे ही होते हैं। हर बीवी कोशिश करे अपने शौहर की पसंद का ख्याल रखने की, करती भी है, कोई ऐसी बिगड़ी भी है वो अलग बात है, लेकिन आमतौर पर औरत अपने शौहर के मामले में बहुत केयरिंग होती है। तो मर्दों को भी चाहिए कि अपनी बीवियों की इस बात को समझे। हर दिन कम से कम 15 मिनट, यानी मैं आपको एक टिप दे देती हूँ, 15 मिनट कम से कम घर के हर फर्द को वन ऑन वन बेस पे दीजिए। मसलन आप खवातीन है ना, आपका एक रूप बीवी का है, एक माँ का है, आपके 3 बच्चे हैं, 15-15 मिनट हुए तो 15 घंटा हो गया, घर में बुजुर्ग हैं, सास हैं, 15 मिनट उनको दीजिए, 1 घंटा हो गया, शौहर को आधा घंटा दें, क्या हुआ आपका 1.5 घंटा लगा, 22.5 घंटे फिर भी आपके। ये 15 मिनट आपने जो देने हैं ना, पता कैसे देने हैं, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं होगा, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई मसले नहीं, मसाइल नहीं, सिर्फ आप और मैं, कैसा दिन रहा, क्या किया, अच्छा रहा, और चाय का कप लेकर बैठा करें। ये सारा रोमांस फिल्मों ड्रामों में नहीं होता, रियल लाइफ में होता है। अल्लाह के नबी अपनी बीवियों के साथ कैसा मामला करते थे, आप पढ़ के देखिए, प्रॉफिट एट होम इंग्लिश की बुक है। आपसे ज्यादा रोमांटिक शख्स कोई नहीं था, अपनी बीवियों को मोहब्बत केयर देने में और आप उनके साथ हंसी मजाक में अपनी मिसाल आप थे। हजरत आयशा के साथ खाना खाते हुए अगर वो हड्डी चूसती तो आप उसी हड्डी को वहीं से चूसते, वो पी कर प्याला आपको देती तो आप घुमा कर प्याला वहीं से लेते जहां से आपने पिया। तो किससे प्यार करना है आपने अगर शौहर से नहीं करना? मसला ये हुआ कि हमारे मीडिया ने हमारी सोच ही बदल दी। फिर इस तरह आप घरों को टूटने से बचाना चाहते हैं तो पाकीज़ा ज़िंदगी बनाएं, सादा ज़िंदगी बनाएं, अपने लिए जिएं, दूसरों के लिए नहीं। अपने शौहरों को मत मजबूर करें कि आपको 20-20 हज़ार रुपये का जोड़ा बना के दें, है नसीब में तो बना दें, बनाते हैं तो कदर से पहन लीजिए, नहीं है तो ना से। अपने शौहर की जान ना लें खर्चों की लंबी लिस्टों पर। इसी तरह हराम कामों और हराम रिश्तों से बचिए। औरतों को चाहिए कि वो उनके मिजाज में आजजी भी हो और मोहब्बत करने वाली हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया सारी की सारी मता है, बरतने की चीज़, यानी जस्ट यूज़ करते हैं आप, लेकिन सारी दुनिया में सबसे कीमती चीज़ नेक और साले औरत है। ये निसाई की रिवायत है 3-2-3-4। तो नेक बनकर अपने शौहर के साथ रहिए। फिर इसी तरह आप घरों को टूटने से बचाना चाहते हैं तो वाउफुल कईल कईल अवल मीज़ान अबिल क़िस्त, सूरत अल-अनाम की आयत 152 पे अमल कीजिए, इंसाफ पे मबनी बात करें। और इसमें मर्दों को ख़ास तौर पे चाहिए, देखें तो सही कि आज जो झगड़ा हुआ इसमें कसूर किसका है, माँ का है या बीवी का। ना सिर्फ बीवी को दबाना चाहिए, ना सिर्फ माँ की गलत पे हाँ में हाँ भरें, पहले समझ से देखिए, फिर अच्छे तरीके से कौले मारूफ के ज़रिए से जिसकी गलती उसको अकेले में मोहब्बत से समझा दिया जाए, इंशाल्लाह मामला बदल जाएगा। इज्जत दीजिए, इज्जत लीजिए, मोहब्बत दीजिए, मोहब्बत लीजिए। फिर इसी तरह वज तनेबू कौल ज़ूर, सूरत हज की आयत 30 है, झूठी बात से बचें। आज एक नियत कीजिए, मैंने अपने घर में झूठ को घुसने नहीं देना। कौलन सदीदा, सीधी बात करें, सच्ची बात करें, सूरत अहज़ाब की आयत 70 है, इंशाल्लाह हमारे घर महफूज होंगे। और अल्लाह का शुक्र है वेस्टर्न होम्स की निस्बत अभी भी हमारे मुस्लिम होम्स बहुत स्ट्रांग है। वैसे तो कहते हैं हमारे मुल्क की बनी हुई चीज़ें टूट जाती हैं, और मैं इसकी गवाही दे सकती हूँ लोगों के बाथरूमों को देखकर, कोई टूटी सलामत नहीं, कोई शावर ठीक नहीं। इससे तो आज तक समझ ही नहीं आती हमें कि हर चीज़ पे पैसा लगाते हैं लोग, इन पे नहीं, क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं, मैं मान लेती हूँ। लेकिन एक चीज़ में हम अभी भी बाहर से अच्छे हैं, और वो रिश्ते निभाने में। जितना सब्र यहाँ फैमिलियों में रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, बाहर की दुनिया में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता है, ख़ास तौर पे जिनका लाइफस्टाइल बदल चुका है। तो शादी कोई फैंटेसी लाइफ नहीं है, मगर इसे आप फैंटेसी लाइफ बना सकते हैं। ये एक जिम्मेदारी है, इसको खुशी से निभाइए और शादी से पहले अपने बेटे और बेटी को अच्छा घर बनाने से मुतल्लिक चीज़ें बताइए, और ख़ास तौर पे आपकी अपने बच्चों की तरबियत में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए कि आपने शादी के बाद के तरीकों को, शादी के बाद के हालात को कैसे फेस करना है। ख़ास तौर पे नए शादीशुदा जोड़े को स्पेस दीजिए, ये हमारे कल्चर में बड़ा बुरा है। हनीमून पे भी वो गरीब जाएंगे तो साथ वो नंद की बेटी चली जाती है, मामू मामी का ख्याल रखना, ये चाचा चाची के साथ चली जाना, समझे ना। ये थोड़ा जगह दीजिए, फिर उसकी हर चीज़ पे नज़र, ये 9 बजे सो के उठी है, ये काम नहीं करती, भैया आप 16-18 की लाए हैं, कोई लाते 30-35 की पक्की औरत तो वो ये सारे काम करती, यानी सास अपने साथ उस बच्ची को मनाए, नहीं, मियाँ बीवी को साथ रहने दीजिए, मत उनके मामले में इंटरफेयर करें। आपने पाल पोस के शादियां कर दी, अब उनको अक्ल मत है, जरा जमाने दीजिए, गलतियां करेंगे आप उनके पीछे, लेकिन बहुत ज़्यादा सर पे सवार नहीं रहना चाहिए। और आप भी अपनी बेटियों को जब भेजें दूसरों के घर तो बस ये पैगाम देकर भेजें कि मोहब्बत फातह आलम, खिदमत कीजिए, दुआएं लीजिए। आज हमारी बच्चियां खिदमत नहीं करती, दुआएं नहीं लेती, हमारे बेटे खिदमत नहीं कर रहे, दुआएं नहीं लेते। आपको पता है कि जो दामाद अपने ससुराल के लिए बेटा बन जाए, वो अपनी बेटी को भूल कर ना उस दामाद के गुण गाते हैं। तो बहरहाल आखिरी बात क्या है कि अल्लाह की मोहब्बत बढ़ाते जाइए, अल्लाह की मोहब्बत बढ़ेगी ना तो आपकी बंदों से भी मोहब्बत बढ़ेगी, आपका ईमान ज़्यादा होगा तो अल्लाह की मोहब्बत बढ़ेगी, ईमान में कमी होगी तो ये मोहब्बत भी घट जाएगी। और आखिर में फिर हम अपने आज के इस मौजू पर एक दुआ करते हैं, आप भी मैं भी, और हम सब अपनी अपनी फैमिलीज को सामने रखते हुए दुआ करेंगे। मांगिएगा, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना قرت اعين وجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ سورۃ فرقان کی آیت 74 میں عباد الرحمن، یہ ان کی دعا ہے۔ ہم سب اپنے اپنے گھر والوں کے لیے اسی کو کرتے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم سب کا گھر کیسا ہو کہ گھر کی طرف جانے والا رستہ ہمیں اس راستے کی طرح دکھے کہ جس میں پھول کھلے ہوئے ہیں، اور جو کمی بیشی ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے معافیوں کے ساتھ معاف کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، جنہوں نے بھی اس محفل کا اہتمام کیا اللہ قبول فرمائے، آپ لوگ آئے، جو بھی اس پہ آپ کی ایفرٹ لگی، مال لگا، وقت لگا، اللہ تعالیٰ اس کو اچھا رکھے۔ یہ ساری باتوں کا ایک خلاصہ کہ اپنی بچیوں کو اور خود کو قرآن سے جوڑیے۔ ابھی رمضان قریب ہے، ہم لوگ ہر جگہ اللہ کے حکم سے قرآن پاک کے شارٹ کورسز شروع کر رہے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالی آپ سب سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔